हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदी गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय जगन्नाथ पुरी की जय गंगमयी जमुनमयी की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक श्लोक हम पढ़ेंगे। धर्म प्रदान किल पाति धर्म इत वृषम धर्म विदस्सदैव वयम च धर्मे प्रयताम नित्यम चर्तु यता शक्ति यता श्रुतौश्च सचापि निघ्नाति न पाति भक्तान मन्येन नित्यम परिपाति धर्मः।
इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि हमने जो वरिष्ठों से सुना हुआ था, धर्म का पालन करने से धर्म हमारी रक्षा करती है, और यथाश्रुत जैसे सुनाया गया था और हमारे शक्ति के अनुसार हमने धर्म का पालन करने का प्रयास किया, परंतु हमें अब समझ में आ रहा है कि धर्म रक्षा नहीं करती है, धिक्कार है ऐसे धर्म को। ऐसा श्लोक है, ये महाभारत में इस श्लोक का वर्णन किया गया है। किसने कहा, कब कहा, इसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे हम लोग कई दिनों से जो यहां पहली बार आए हुए हैं, हम महाभारत के जो विवादस्पद प्रसंग, विवाद महाभारत में नहीं है, विवाद कलयुग के लोगों के मन में है, परंतु विवाद है, संशय है, इसलिए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफी लोग अलग अलग प्रकार का प्रश्न करते हैं, तो हम लोग सुबह कर्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे। कर्ण महाभारत के हीरो या जीरो? जीरो तो अच्छा है क्योंकि न्यूट्रल रहता है, परंतु जो नकारात्मक गुण है वो समाज के लिए क्या कर देता है, वो बाधा बन जाता है। तो क्या कर्ण सही में एक ऐसे आदर्श व्यक्ति थे जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, या कर्ण ऐसे व्यक्ति है जिनको हमको छोड़ देना चाहिए, इसकी चर्चा चल रही थी। और अब आज हम दो जो प्रसंग है महाभारत के उसकी चर्चा करेंगे, काफी बहुत बताने के लिए है, कल सुबह चर्चा करेंगे। दो प्रसंग ये है, कर्ण की मुलाकात कृष्ण के साथ और कर्ण का युद्ध अर्जुन के साथ। अगर और समय मिले तो बाकी का भी प्रसंग लेंगे। तो जैसे पूर्व पक्ष हमने कहा था कि जिनका वाद है, जो व्यासदेव जी के अलग मत वाले कहते कि देखो कृष्ण के साथ बहुत अन्याय हुआ, समाज ने उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, उसको लोगों ने बहुत धोखा दिया, उनकी मां स्वयं कुंती और कृष्ण जब वो जानते नहीं थे कि वो युधिष्ठिर महाराज के बड़े बंधु है, कुंती के पुत्र है, गलत समय में आकर उनको समझाया कि देख तू कुंती का पुत्र है, और एक कहने से क्या हो गया, वो युद्ध में बहुत शिथिल बन गया, संघर्ष करने की शक्ति उसमें कम हो गई और इसी कारण वो परास्त हो गया। और कैसे परास्त हो गया, उसकी मृत्यु, शूरवीर था उसको ऐसे कोई मार नहीं सकते थे, जब वो नीचे गिरा हुआ था उसको युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, वो बोल रहा था अर्जुन को मत मारो कि मैं एक जो योद्धा हूं परंतु नीचे गिरा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, यानी कि मेरा रथ फंस गया है, जब तक मैं ऊपर नहीं आऊंगा तब तक युद्ध मत करना। फिर भी कृष्ण के तंत्र के कारण अर्जुन ने उसको बाण से मार दिया। तो लोग इस कहानी को सुनते हैं, और खास करके जैसे हम चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका 25 बार पुनर्मुद्रण हुआ है, देख सकते हैं। हमारा गीता भी इतना नहीं हुआ है, गीता भी 25 बार नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा था, जब हम लोग 5 साल के लिए, मैं स्वयं सब महाराष्ट्र में हम लोग भ्रमण कर रहे थे अलग अलग गांवों में और कंपनियों में, तो लोग आते ही पहला प्रश्न करते थे, उनको लगता था कि ये महाभारत ही है, भगवद गीता देखकर पूछते थे मृत्युंजय आए का, मृत्युंजय पाइजे मृत्युंजय। तो ये स्वाभाविक है, अगर कोई कवि अपने कविता के कल्पना के द्वारा, अपने प्रतिभा शक्ति के कारण अगर ऐसे कोई सुंदर कविता लिखता हो, उसे लोग स्वाभाविक से आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब काव्य इतिहास के साथ आ जाता है, इसकी हमने चर्चा की है, काव्य और इतिहास में अंतर है। अगर ये फूल आपने लिया, कमल का फूल लेकर अगर उसके प्रति आपने कुछ कविता लिखी, अपने कल्पना शक्ति को आकाश तक लेकर गए, और जब उस फूल की वर्णन करते हो, फूल का वर्णन करते हो, फूल के बारे में कुछ कल्पना बनाते हो, फूल बात कर रहा है, जैसे हमने हमारे स्कूल में पढ़ा था, एक फूल वो चर्चा करती है, अरे मुझे कहाँ ले जाते हो, मुझे झाड़ से क्यों निकालते हो, मुझे स्मशान में क्यों ला जाते हो, मुझे मंदिर क्यों ले जाते हो, नास्तिकवाद कि मुझे झाड़ पर रहने दो ताकि मैं वहां सुंदर लगती हूं, यहां ही मैं सूख जाऊं। तो कल्पना शक्ति ठीक है, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास को, जो इतिहास में है, उस इतिहास के पात्रों को निकालकर, वो कोई फूल नहीं है, इतिहास के पात्र, इतिहास के पात्र है, उनके साथ में कुछ इतिहास हुआ है, उस इतिहास को किसी ने लिख कर रखा है, अधिकृत व्यक्ति जो इतिहास को देखे हुए है, और उस पात्र को निकालकर अगर हम अपने कल्पना शक्ति के द्वारा उस पात्र को बदल देते हैं, ये क्या हो गया, ये इतिहास नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट हो गया, ये हिंसा हो गई। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण समाज में गलत फहमी हो जाती है। और दुर्भाग्यवश ऐसे ही कई ग्रंथों में हुआ है, खास करके इस पात्र के बारे में, कर्ण के पात्र के बारे में। जब कर्ण को हम उसके स्तुति से आक्षेपण नहीं करते, लेकिन जब इतिहास को बदल देते हो उसको ठीक करना चाहिए, उसकी स्तुति करना है करो। महाभारत में व्यासदेव जी ने भी उसकी स्तुति की है, लेकिन उसकी स्तुति करते करते अगर वहां कृष्ण की निंदा हो रही है, अर्जुन की निंदा हो रही है, भक्तों की निंदा हो रही है, धर्म की निंदा हो रही है, और धर्म की निंदा के साथ साथ अधर्म की स्तुति हो रही है। दक्षिण भारत में एक जगह में मंदिर है, दुर्योधन का मंदिर, रावण का मंदिर, ये भारत देश में। देखो जैसे पहले दिन कहा, कोई प्रश्न करते हैं भारत में क्यों भगवान आते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़े राक्षस लोग भी आते हैं। कर्ण, दुशासन, इनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, यहां ही हुआ। जहां राक्षस है वहां ही वहां भगवान आएंगे। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम। तो इस दो प्रसंग को अगर हम व्यास के भारत से अगर पढ़ेंगे, व्यास के महाभारत, जिनको भी कर्ण के बारे में जानकारी है, कृष्ण के बारे में जानकारी है, अर्जुन के बारे में जानकारी है, सब कुछ व्यास देव से आया हुआ है। व्यास के अलावा और कोई इन पात्रों के बारे में बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आ सकता, उनसे ही मिलेगा। तो उनको ही जाकर पूछते हैं आपका क्या मत है। जो भी हम यहां चर्चा कर रहे हैं व्यास भारत से ही है। जिस समय शांति का जो संदेश भगवान लेकर आए हस्तिनापुर उपप्लव्य से, बड़े कष्ट से वहां आए, उन्होंने शांति का समाचार सुनाया, बड़े उद्विग्न होकर चारों जो नीति है, साम दान दंड भेद, दंड को अपनाया नहीं, साम दान भेद को अपनाया। और अपनाने के बाद उनका जो प्रयास है विफल रह गया, और आकर युधिष्ठिर महाराज को कहते, युधिष्ठिर मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने सब प्रकार से प्रयास किया शांति को बनाए रखने के लिए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। अब मुझे लगता है दंड को अपनाना पड़ेगा। जो दंड यानी कि पनिशमेंट देना, इसको कृष्ण दूर रखना चाहते थे। अगर बदल गए तो अच्छा ही है, अगर नहीं बदलेंगे तो दंड का उपयोग करेंगे। और जब कृष्ण प्रवचन कर रहे थे और उनका बातों को सुनने के लिए अलग अलग जगह से कितने सारे ऋषिगण आए थे, उन्होंने कृष्ण की वाणी को सुना, उनकी जो उनका जो आवाज था, महाभारत में इतने सुंदरता से वर्णन किया है, जैसे मेघ गरजते वैसे उनका आवाज निकल रहा था, गंभीर आवाज, और परंतु इतने स्पष्ट शब्दों से उन्होंने सबको समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं हुए। तो चार लोग, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, वहां उठ के चले जाते हैं। अगर कोई आपके घर में कोई अतिथि आता हो और वो कुछ बोल रहे हैं और बीच में उठकर जाना, ये अपराध है। यानी कि उनको वो सिविक सेंस भी नहीं था, एक कल्चर नाम की चीज होते वो भी नहीं था। वो चले गए और जाकर उन्होंने क्या सोचा, और किसने कहा ये महाभारत में पढ़ सकते हो। कर्ण ने उनको कहा, अगर इस वसुदेव को हम बंदी बनाएंगे, इसको रस्सी से बांध देंगे, क्योंकि एक कृष्ण हमारे में भेद डाल रहा है, वसुदेव भेद डाल रहा है, और धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर मिलकर हमें बंदी बना देंगे, अगर हमें बंदी बना देंगे तो क्या होगा, हमारा जो सारा जो प्रयास विफल हो जाएगा, उसके पहले हम कृष्ण को बंदी बना देंगे, बांध देंगे उसको रस्सी से और उसको मार देंगे, ऐसी भाषा में बोलते हैं, उसको मार देंगे, और कृष्ण मर जाएंगे तो तब क्या होगा, अर्जुन मारा जाएगा, अर्जुन मर जाएगा तो क्या होगा, पांडव मारे जाएंगे। इस प्रकार से हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो इस समाचार, क्योंकि सात्यकी भी वहां आए हुए थे, उन्होंने अपने गुप्तहरों को भेजा हुआ था, वो लेकर आए, अरे देखो ये लोग बांधना चाहते हैं कृष्ण को। तो कृष्ण को जब बांधने का प्रयास कर रहे थे, उनको सुनाया गया देखो कृष्ण आपको बांधना चाहते हैं, कृष्ण का बांधो, अगर बांधना चाहते हो बांधो। आचार्यगण कहते हैं कि मेरी मां ने मुझे बांधा था प्रेम के कारण, लेकिन अगर आप क्रोध के कारण बांधना चाहते क्या बांधोगे? जैसे जो कापस या कपास होता है उसमें कोई अग्नि को रख सकता है, कॉटन में अगर अग्नि को रखोगे कॉटन जल जाएगा, वैसे अगर कोई जो इस सृष्टि के उस पार है, आतीत है, उनको रस्सी से कैसे बांध सकते हो? यशोदा ने रस्सी से नहीं बांधा लेकिन प्रेम से बांधा। उस कृष्ण को बांधना चाहते थे, कृष्ण ने क्या किया? आपको लगता मैं अकेला हूं, उन्होंने ट्रेलर दिखाया कौरवों को, विश्वरूप दिखाया, और उस विश्वरूप में सारे देवतागण, देवीगण, रुद्र, मरुत, वरुण, ब्रह्मा जी, द्वादश आदित्य, वसुगण, यक्ष, किन्नर, राक्षस, इन सब का दर्शन कराया। बोलो देखो इसको बांधो। एक कोई कहता है कि जैसे भगवान अपने विश्वरूप को दिखाने लगे मत के कारण, उसी तरह यहां बांधो उधर बांधो, भाग रहे थे इधर उधर बांधने के लिए। देखो अर्जुन और उनमें अंतर क्या था, अर्जुन प्रणाम कर रहे थे और ये बांधना चाहते थे। और धृतराष्ट्र को भी दिखाया कृष्ण ने, तो वहां से कृष्ण अपने विश्वरूप को समेट लिया और वहां से बाहर निकले और निकल गए। उनको विदा देने के लिए तीन चार लोग आए और वहां निकलकर कृष्ण कहां चले गए? कर्ण के पास चले गए। देखो जो बांधने के लिए आया था उसके पास जाते हैं, उसको अपने रथ पर बिठाते हैं, सात्यकी को नीचे उतार कर उसको अपने रथ पर बिठाते हैं और उसको ले जाते हैं और उसे बातें करने लगते हैं कि देखो कर्ण आप कुंती के पुत्र हो, आप राधेय नहीं हो, आप कुंती के पुत्र हो, आप सूत नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। और कर्ण क्या कहता है, मैं जानता हूं, समझ गया ना? स्वयं कर्ण कहता है कि मैं जानता हूं और कर्ण भक्त कहते कि कर्ण नहीं जानते थे, किसको मानना है? वो लोग कहते कि कर्ण को पहली बार समझ में आ गया कि वो कुंती का पुत्र है, लेकिन महाभारत में लिखा है, गणपति ने लिखा है, सब महाराष्ट्र में गणपति को तो मानते हैं, व्यासदेव को नहीं मानेंगे तो कम से कम गणपति को तो स्वीकार करो। तो गणपति कैसे लिख रहे थे? सोचकर। व्यासदेव जी ने कहा था सोचकर लिखना है, जानकर लिखना है, ऐसे ही नहीं मत लिखो। अभी आपको शिवाजी सावंत को स्वीकार करना है, गणपति को स्वीकार करना है, ये आपके ऊपर है। तो कहते कि मैं जानता हूं, यानी इनको कब जानकारी हो गई? बहुत पहले जानकारी हो गई थी। हो सकता है कि उनके पिताजी जो आदिरत्य मरते मरते अपने कहानी को सुनाया होगा। और कृष्ण ने कहा देखो कर्ण आप कुंती पुत्र होने के नाते अगर आप पांडवों की ओर आ जाओगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से आप राजा बन जाओगे, युधिष्ठिर महाराज युवराज बनेंगे, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम आपको चामर डुलाएंगे। और इससे क्या होगा, इतना महान नर संहार बच जाएगा। ये कोई कुतंत्र नहीं था, कृष्ण अभी भी प्रयास कर रहे थे, आए धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना जरूरी नहीं कि रक्तपात से होना चाहिए, अगर शास्त्र से लोग सुनेंगे, वैदिक ग्रंथों के सुनेंगे, दर्शन हो जाएगा, उसके द्वारा परिवर्तन हो सकता है। अगर उससे परिवर्तन नहीं होगा तब भगवान को शस्त्र उठाना पड़ता है। सुदर्शन, दो सुदर्शन है, जो शास्त्र को भी दर्शन कहा गया, दर्शन शास्त्र। अगर इसका दर्शन नहीं करना चाहते हो तो भगवान का सुदर्शन चक्र है, और वो सुदर्शन चक्र अलग अलग रूप धारण करता है, काल चक्र, काल के प्रभाव से भी वो हमें नाश कर देता है। तो उन्होंने समझाया, देखो ऐसा कर लो। तो कर्ण ने कहा ये नामुमकिन है, जिनको जिन्होंने मुझे बड़ा किया है अधिरथ राधे और मेरी पत्नी, इनको छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूं। कब कहा कृष्ण ने उनको छोड़ दो, आवश्यकता नहीं कि आप उनको छोड़ना चाहिए, उनको भी उसका लाभ मिल जाएगा। तब भगवान कृष्ण कर्ण को कहते हैं फिर से, वो प्रयास करते उनको समझाने के लिए। कर्ण कहता देखो कि दुर्योधन मुझे इतना मदद किया है, मेरी सहायता की है, जब मैं विवश था, मेरे साथ में कोई नहीं था, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं था, उस समय दुर्योधन ने क्या किया, मुझे अपना मित्र बनाया और मैंने उसको वचन दिया है कि मैं मेरा जान दूंगा लेकिन मेरे वचन को नहीं तोड़ूंगा, इसलिए मैं उसको दुखी नहीं बना सकता। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न यह है, अगर दुर्योधन कर्ण का सही मित्र होता, असली में उसको कर्ण के प्रति प्रेम था, अगर कर्ण राजा बन जाता, उसे युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट होना चाहिए था और दुर्योधन को भी संतुष्ट होना चाहिए था। दुर्योधन यहां बैठ जाता था मंत्री के रूप में, यहां युधिष्ठिर महाराज मंत्री के रूप में बैठ जाते थे। मना क्यों किया कर्ण स्वीकार करने के लिए? यहां कोई कुतंत्र नहीं है, यहां तंत्र है। तंत्र किसका है कि सबको इकट्ठा लाने के लिए। आप अपने मन के द्वारा सोच सकते हो लेकिन मना कर दिया नहीं, क्यों? क्योंकि जानते थे कर्ण दुर्योधन की मित्रता किस पर निर्भर है, वो खुद राजा बनने में। अगर कर्ण राजा बन जाएगा उसका द्वेष जितना पांडवों के प्रति था उतने उसके पास हो जाएगा। ये अंधा मित्रता होने के कारण उसने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा और इस समाचार को कि मैं कुंती का पुत्र हूं युधिष्ठिर को मत बताओ। क्यों मत बताओ? क्योंकि युधिष्ठिर को बताने से वो सबको त्याग करके मुझे ही राज्य दूंगा, मुझे ही राज्य देगा और मैं राज्य किसको दूंगा, दुर्योधन को दूंगा। ये हो गई दुष्टता, ये महानता नहीं है। अगर कोई कहेगा कि मैं आपको भारत देश का प्रधानमंत्री बनाता हूं, आप कहोगे मैं नहीं लूंगा, मैं कश्यप को दूंगा। ये कोई त्याग है? ये कोई महानता है? यानी कि त्याग, भगवान गीता में कहते हैं सत्पात्र को दान देना चाहिए। अगर सत्पात्र नहीं है उसको दान देने से क्या हो जाता है, वो दान का लाभ नहीं होता। तो ये कहना कि मैं दुर्योधन को ही राज दूंगा और स्वयं कर्ण इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण को कहता है कि कृष्ण मैं जानता हूं कि दुर्योधन हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते, अपने जो सेवक है उनके प्रति ठीक से व्यवहार नहीं करते, संतों के प्रति वो भक्ति नहीं रखते और उनमें बहुत सारा द्वेष है। देखो उसी अध्याय में यही कर्ण कह रहा है कि इसमें ऐसे गुण नहीं है लेकिन अगर युधिष्ठिर महाराज मुझे राज्य देंगे तो मैं किसको दूंगा, दुर्योधन को दूंगा। इसमें कोई कोहेरेंसी है? इसमें कोई सिस्टम है? जानते हो कि कश्यप टेररिस्ट है लेकिन उसको ही मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, क्या भगवान उसको देंगे? नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। और कर्ण जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जानबूझकर जो जानते हैं लेकिन फिर भी कहते नहीं हम नहीं करेंगे, हम बदलेंगे नहीं, ये राक्षसी वृत्ति है। तो कर्ण कहता है कि हे कृष्ण कि मैं देख रहा हूं, ये मुझे ऐसे स्वप्न आ रहे, ऐसे मुझे दर्शन हो रहा है कि जब दुर्योधन के लोग, दुर्योधन दुशासन मैं सब कुछ किस दिशा की ओर जा रहे, दक्षिण दिशा की ओर जा रहे। दक्षिण दिशा ने के क्या, यमराज का स्थान, उस दिशा की ओर जा रहे और हमारे सारे सैनिक दुर्योधन सब ये लाल पगड़ी पहने हुए, लाल कपड़ा पहने हुए, लाल कपड़ा यानी कि क्या, मृत्यु तुल्य, उनको मृत्यु आ रही है। और युधिष्ठिर महाराज उनके जो कपड़े सफेद है, उनकी जो पगड़ी है वो सफेद है, नकुल, अर्जुन, भीम, सहदेव वो भी सफेद कपड़े पहने हुए, और सारे जो शुभ प्राणियां वो युधिष्ठिर महाराज के दाहिनी ओर से जा रही है, और दुर्योधन की ओर से सारे अशुभ प्राणियां बाई ओर से जा रही है। मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारे सारे जानवर, हमारे सैनिक वो क्या कर रहे हैं, हमारे जानवर, हमारे सैनिक वो खाते हैं कम और विष्ठा को बहुत त्याग करते हैं। ये रोग का प्रतीक है, यानी कि अपने 5 ग्राम खाया और 50 ग्राम विष्ठा को त्याग कर दिया, वो क्या हो गया, ये पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी कि इन सब लक्षणों को देखने पर भी ये व्यासदेव की बात नहीं है, एक स्वयं कर्ण की बात है। कर्ण कहता है फिर भी हे कृष्ण, अगर हो सके तो हम युद्ध भूमि पर मिलेंगे, अगर जीवित रह जाऊं तो बाद में मिलेंगे, नहीं तो स्वर्ग में मिलेंगे। उसको खातिरी था वो स्वर्ग में चला जाए। तो ऐसा कहकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा है। देखो जिस समय भगवान दुर्योधन के पास आए शांति दूत बनकर, तो कृष्ण से विदुर ने कहा, ये कोई इस प्रवचन सुनने वाला है, दुर्योधन ने कभी प्रवचन सुना है, ये तो सुनेगा नहीं, तो क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो इसके पास, इसके अंदर क्या योग्यता है जिससे कि वो प्रवचन नहीं सुनता, उसकी योग्यता बता रहे थे। प्रवचन सुनने वालों की योग्यता क्या होती है और प्रवचन न सुनने वालों की योग्यता क्या होती है, विदुर बताते हैं भगवान कृष्ण को, और 16 गुण बताते हैं दुर्योधन के, एक नहीं दो नहीं 16 गुण। एक ये है कि उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये सब कुछ जानता हूं, अहंकारी है, कभी कुछ नहीं सुनता, क्यों जाते हो, अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं विदुर, जो आप कह रहे हो वो सही है, वो नहीं सुनेगा, लेकिन प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। देखो अगर भगवान कहते हैं गीता में मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, लेकिन अगर अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, कृष्ण हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है, लेकिन भगवान किसकी किसका प्रयोग करते हैं, अपने आशा का। बद्ध जीव भी बदल जाएंगे। अगर ज्ञान चक्षु से देखेंगे कोई बदलेगा नहीं, अगर आशा शक्ति से देखेंगे तो इसलिए बार बार जीवों को वो क्या करते, सुविधाओं को देते। इसलिए दुर्योधन का इतिहास ऐसा था कि वो बदलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण में आशा थी कि मैं प्रयास करूंगा। देखो और इसमें कुतंत्र क्या था, लोग कहते अरे शांति के लिए गए ही नहीं, वो केवल क्या था, एक केवल एक्सक्यूज था, उनको शांति करना ही था। एक स्वयं गांधारी उनके ऊपर आरोप लगाती है सब मरने के बाद। तो जब कर्ण ऐसा कहता है कि मैं, तो कृष्ण उससे विदा लेकर चले जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कृष्ण ने क्या किया, ये देखो इतना बड़ा आरोप लगाते हैं कि कृष्ण ने कहा कर्ण को, क्योंकि कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त थे पहले से, उन्होंने कहा देख तेरे को द्रौपदी भी मिल जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है लोगों ने अपने महाभारत में। अभी कौन से महाभारत में ऐसा है, कृष्ण कोई आज के राजकारणी है ऐसा कहना, कभी भी ऐसा लिखा नहीं महाभारत में। और वो कहते कि कृष्ण ने कुंती के पास जाकर कहा कुंती अब तुम जाओ, मैंने प्रयास किया उसको भी थोड़ा सा नरम बना दिया और तुम नरम बनाओ, ये भी महाभारत में नहीं। भगवान वहां से चले जाते हैं, कुंती के साथ विदुर का मिलन हो जाता है, विदुर मिलते हैं और विदुर कहते कि देखो इतना नरसंहार होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। तो वहां कुंती कर्ण को दुर्बल बनाने के लिए नहीं गई, बल्कि उसके मन में भय आ गया कि इतने लाखों लोग मारे जाएंगे, इसको रोकना चाहिए, अगर कर्ण बदल जाएगा तब क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो जाकर उसको कहती है, तो कर्ण उसकी इतनी निंदा करते हैं कुंती को सहन करना पड़ता है। तूने क्या किया मेरे लिए? केवल तेरे हित के लिए आ गए इधर, मैं इतना कष्ट उठाया, फिर से आ गए, मेरा ही जीवन में कष्ट। जो अपने आप को समझता है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट हो गए ही, आप लिस्ट बनाओ, कुंती के कष्ट को देखो और कर्ण के कष्ट को देखो, किसका लिस्ट बड़ा है? लिस्ट किसका बड़ा है? कुंती का बड़ा है। लेकिन फिर भी जो अंधे है और जो केवल अपने बारे में सोचते, इतनी भर्त्सना करते हैं, इतने ताड़ते हैं कुंती को कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए आप छोड़ दिया, अब अपना स्वार्थ आया हुआ इसलिए आई हो, नहीं ऐसी आई नहीं थी, वो केवल युद्ध रोकना चाहती थी। और कुंती ने ये वर नहीं मांगा कि कृपा करके आप मेरे बच्चों को बचाओ। कर्ण दानशूर था ना, सब जगह में दान देता रहता था। उसने कहा देख कुंती, 5 पुत्र तो रहेंगे, आपके 4 पुत्र अर्जुन, या अर्जुन मर जाएंगे मैं रहूंगा, लेकिन अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा ही, मैं लड़ूंगा ही, ये तो अर्जुन मारा जाएगा या मैं मारा जाऊंगा। ऐसे कहकर वो कुंती को विदा देता है, वो भी तैयार नहीं होता। तो यहां हम और चर्चा कर सकते हैं। देखो कभी कभी बड़े जो भारत में बहुत सारे डेकॉइट्स हुए थे, वो बड़े धनिक लोगों को लूटते थे और गरीबों को बांटते थे। एक दृष्टि से सही है, दूसरे दृष्टि से न्याय को अपने हाथ में लेना भी एक क्राइम ही है। अगर कोई चोरी कर रहा हो और उस चोर को अगर मैंने मार दिया, तो चोरी जिसने किया है वो उतना ही क्रिमिनल है और जिसने मारा है वो भी उतना ही क्रिमिनल है। मेरे ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाया जाएगा, होता है कि नहीं? अगर किसी चोर को मैंने मार दिया तो क्योंकि मैंने न्याय मेरे हाथ में लिया, उसके लिए मेरे ऊपर जो न्यायाधीश है या कोर्ट है वो मेरे ऊपर दंड देगी, मुझे दंड देगी। तो वैसे ही अगर कोई डेकॉइट ऐसा कर रहा है, गरीबों को बांट रहा है, ये स्वाभाविक है कि गरीब लोग उसके प्रति अनुकंपा रखते हैं। लेकिन बड़े होकर जब समझ में आते, वही अधिकारी बन जाते पुलिस ऑफिसर और प्रामाणिक पुलिस ऑफिसर बन जाते और समझ जाते कि अरे मैंने किससे मदद लिया, डेकॉइट से मदद लिया, और ये क्या कर रहा है, एक गरीब के नाम में 5% बांटता है परंतु इतना सारा अपने पास ही रखता है। जब उसके अधिकारी कहते तू उसको जानता है, तो उसको उसने आपको मदद किया हुआ है, अब आपको ही हम भेजेंगे उसको पकड़ने के लिए, क्या उस अधिकार को जाना चाहिए या नहीं? उसको जाना चाहिए कि नहीं? कौन कहता कि नहीं जाना चाहिए? अगर वो प्रामाणिक है, देश के लिए सेवा कर रहा है, जानते हुए कि इसने मुझे मदद किया लेकिन फिर भी समाज के लिए कंटक है, उसको जाकर क्या करना चाहिए? उसको बंदिस्त बनाना चाहिए। यानी कि जानबूझकर के धर्म के विरुद्ध, ये धर्म से राज्य नहीं करेगा, इसके राज्य में केवल पापी होगा, ये जानते हुए भी, क्योंकि उन्होंने बचपन में कुछ उसको भौतिक सुख दिया था और उस मित्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अगर केवल उसको पकड़ लेते तब क्या होता, सारा संहार बच जाता था। विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र को त्याग दो इसको, कृष्ण ने कहा इसको बंदी बनाओ, और कृष्ण यही कह रहे थे तुम राजा बन जाओ, उसको बंदी भी बनाने की आवश्यकता नहीं, तब क्या होगा, युद्ध बंद हो जाएगा, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो माफिया हो, वो गुंड हो, लोगों को मारता हो, देशद्रोही, वो मेरा मित्र है, मित्रता मैं नहीं छोड़ सकता, ऐसे मित्रता के लिए कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन मित्रता है, ऐसे मित्रता को त्याग देना चाहिए। और वो कह रहा है देखो अगर मैं दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आ जाऊंगा पांडव पक्ष में आना नहीं, पांडव के पास आते ही सब कुछ बंद हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा उधर फिर से, दुर्योधन पूरा शिथिल हो जाएगा। पांडव पक्ष में आ जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, देखो उसको अपने खुद के नाम की पड़ी थी, समाज का नहीं पड़ा था, लाखों लोग मारे जाएंगे उसका नहीं पड़ा था, मेरे बारे में क्या लोग सोचेंगे। अरे देखो अर्जुन के बारे में लोग अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन अर्जुन इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। अर्जुन ने क्या सोचा, कृष्ण की इच्छा है, धर्म की स्थापना करनी है, कृष्ण कहते अभी मारो, जब वो विवश है उसके हाथ में बाण ने मार दिया, झूठ बोलो झूठ बोल दिया। न तो इसमें कृष्ण का स्वार्थ था न तो पांडवों का स्वार्थ था। कृष्ण ने जो कुछ भी किया, देखो कृष्ण ऐसे एक राजा, ऐसे एक राजतंत्र थे, उन्होंने क्या किया, कोई पोजीशन नहीं लिया किसी हालत में, वो किसी के राजा नहीं बने, किसी के मंत्री नहीं बने, वो क्या रहे, वो कृष्ण ही रहे। एक जगह से दूसरे जगह में जाते थे, वहां अगर कोई पाप चला उसको रोकते थे, जरासंध को मारकर किसी अपने यादवों को उधर नहीं बिठाया, किसको बिठाया, जरासंध के पुत्र को ही बिठाया, शिशुपाल की हत्या कर दी किसको बिठाया, उसके पुत्र को बिठाया। जब रुक्मी को मारा ऐसा नहीं कि कोई अपने सैनिक को बोला जा तू उधर राज कर। कृष्ण जहां भी जा रहे थे कभी भी जो लोकल सिचुएशन को बदला नहीं, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री त्रिपुरा की बन जाएंगे तो फिर क्या फायदा, वो कुछ जानता ही नहीं है। इटली की भारत के प्रधानमंत्री बने तो क्या फायदा है, जो भारत को जानते हैं, भारत में उनका जन्म हुआ है, ये स्वाभाविक। देखो कृष्ण का कैसे कारोबार था, उन्होंने कभी बाहर से किधर किसी को नहीं बैठाया, आप देखो हिस्ट्री में, तो उसमें कृष्ण का क्या स्वार्थ है। और पांडव तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, यानी कि न तो कृष्ण कंट्रोल गॉड फादर थे, न तो पांडव वैसा बनना चाहते थे। ये महाभारत कोई पढ़ते नहीं है, देखो कृष्ण ने क्या कर दिया, कर्ण के साथ इतना अपराध कर दिया, इतना कुतंत्र कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। तो कर्ण तैयार नहीं हुए, उनके पास एक ऐसा धर्म बन गया था जो धर्म के विरुद्ध था, एक मित्रता बचाने के लिए वो लाखों लोगों को मारने के लिए तैयार थे, और अपना नाम, मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है चले गए भगवान कृष्ण, युद्ध चालू हो गया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कृष्ण कर्ण, क्योंकि जब ऐसे जो गलत धर्म में फंस जाते हैं उनके हाथ से गलती होती है निश्चित रूप से। दुर्योधन ने क्या कहा, मेरा मित्र मेरा मित्र मेरा मित्र, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, उसके लिए मैं प्राण दूंगा। जब भीष्मदेव उनको क्या बनाया गया, सेनानी बनाया गया, और भीष्मदेव को कहा दुर्योधन ने, बताओ हमारे सारे जो भी रति है, महारति है अतिरति है, उनके बारे में बताओ कौन कौन क्या है। सब लोग बैठे हुए थे, फिर भीष्मदेव निष्णात थे, एक्सपर्ट थे, जैसे इलेक्शन के पहले आता है ना कौन जीतेगा, पोल होता है पोल, किसकी शक्ति क्या है, किधर कौन जीतेगा, या क्रिकेट जब चलता हो, फुटबॉल चलता हो, उसके लिए पहले स्टैटिस्टिक्स आता है, किसकी शक्ति क्या है, उसने चार साल में क्या क्या किया है। वैसे ही भीष्मदेव पूरा इतिहास सबके बारे में जानते थे, सबको बोलने लगे ये ऐसा है वो ऐसा है, और उन्होंने कहा ये जो अश्वत्थामा है ना वो आधारित है। क्यों आधारित है अश्वत्थामा, बोले देखो ये महान शक्तिशाली है लेकिन इसको जीने की आशा बहुत है, क्षत्रियों को जीने की आशा नहीं होनी चाहिए, उनको युद्ध करने की आशा होनी चाहिए। एक क्षत्रिय न होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण इसको जीने की आशा बहुत है, ये इसका बड़ा दोष है, इस दोष के कारण ये केवल आधा रति है। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं बोला, उसके पिताजी भी बैठे हुए थे द्रोणाचार्य, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, और सबकी बात हो गई, कर्ण की बात नहीं आई। तो दुर्योधन ने पूछा मेरा मित्र का क्या है, उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं, महारथी अतिरथि सबकी चर्चा हो गई लेकिन मेरे जो सबसे महत्वपूर्ण मित्र है उसके प्रति मैं पूरा निर्भर हूं, उसके बारे में क्या है। तो भीष्म देव ने कहा मैं न तो इसको रति मानता हूं न तो महारति मानता हूं, ये आधा रति है। जैसे कहा कि आधा रति है भड़क गया कर्ण। बूढ़े मैंने सुना था कि बूढ़ों का सुना चाहिए, लेकिन व्यक्ति जब ज्यादा बूढ़ा हो जाता है बच्चे जैसा हो जाता है, ऐसे उनकी निंदा करने लगता है। केवल निंदा नहीं करते हैं, और भीष्मदेव बोलते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तो ये बहुत बोलता है, हमेशा बड़बड़ करता रहता है, ढींगे पिटता रहता है, और दूसरा है शापग्रस्त है। ये शापग्रस्त होने के कारण, यानी कि जैसे कभी कभी होता है आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हो अपने कमरे में, और किसी प्रेजेंटेशन के लिए जब जाते हो और एक वायर मिस हो जाता है, पावर पॉइंट के लिए क्या चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर चाहिए, लैपटॉप है और प्रोजेक्टर है लेकिन उसका कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो अब क्या हो गया, वो कंप्यूटर में पावर पॉइंट होने पर भी वो वायर न होने के कारण आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। वैसे उसको मंत्र बोलने की शक्ति है, दिव्यास्त्र है, कहां घर पे है। जब तक वो घर पे रहेगा, जब तक दूसरे योद्धाओं के साथ लड़ता रहेगा, ये पावर पॉइंट काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन के सामने आएगा तो क्या होगा, वो वायर ही गुम हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ये शापग्रस्त होने के कारण ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अर्धरति है। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा, उन्होंने सुना था अश्वत्थामा के बारे में, उन्होंने कहा हां बराबर है, आप जो कह रहे हो इसको मैं मानता हूं, ये सही है। इसमें कोई कुतंत्र था, भीष्मदेव ने अश्वत्थामा के बारे में भी कहा था, कर्ण के बारे में कहा जो सत्य था, उनको आपने स्टैटिस्टिक्स वाले बनाया था, उनका एमएससी हुआ था, तो कह रहे फिर उसको निंदा करो, और निंदा ही नहीं किया बल्कि क्या किया, देखो दुर्योधन का जो सेना था वो बहुत प्रयास से सबको इकट्ठा किया था, उनका केंद्र बिंदु कुछ नहीं था, एवरीबडी वॉज इज ओन प्लेयर, सब अगर अपना ही सोचता रहेगा मैं जाकर कितना स्कोर करूं, मुझे ही गोल मारना है। अगर 11 ही प्लेयर फुटबॉल खेलते समय गोली के साथ सोच रहा है कि मुझे ही गोल मारना है, तो गोल किसको मारा जाएगा, इनको ही मारा जाएगा। दे वॉन्ट टू स्कोर गोल बट पीपल विल स्कोर गोल अगेंस्ट देम, तो सब लोग अपना ही सोच रहे थे, मैं देखो युद्ध करूंगा लेकिन ये मेरा नियम है। नियम क्या था, कर्ण ने कहा जब तक ये बूढ़ा जीवित रहेगा तब तक मैं युद्ध भूमि पर नहीं आऊंगा, यानी कि उसी का एक मित्र, दुर्योधन का मित्र, उनकी सेना के लिए युद्ध कर रहा था, वो पहले ही अपने सेनानी को शाप दे रहा है कि तू मर जा। ऐसी यूनिटी थी, इसको आप क्या कहोगे, ये कोई महानता है, ये कोई मित्रता है, यानी कि जब आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कब तक युद्ध नहीं करूंगा, जब तक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मरेगा, यानी कि हर रोज वो सपना देख रहा था भीष्म कब मरेगा, ये भीष्म कब मरेगा, ये भीष्म कब मरेगा। हो गया कि नहीं, धोखा दिया कि नहीं, धोखा देने में वो निष्णात थे। एक द्रोणाचार्य यही कहते हैं कि जबी जबी आपने कहा कि चलो इसके ऊपर चढ़ाई करो, और जहां जहां भी चढ़ाई करने की बात आई, विराट के घोष यात्रा में, द्वैत वन में, गंधर्वों के साथ, द्रौपदी के स्वयंवर में, व्यासदेव जी लिखते कर्ण ने पहला पलायन कर दिया, वहां से भागे, यानी कि 10 दिन तक उन्होंने युद्ध नहीं किया, क्योंकि भीष्मदेव 10 दिन तक युद्ध करते रहे। इसलिए दुर्योधन के सेना में ऐसे लोग थे, भीष्म ने कहा था मैं पांडवों को मार नहीं सकता, फिर युद्ध करके क्या फायदा है। कर्ण ने कहा मैं अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर सकता, और द्रोणाचार्य ने कहा, और कर्ण ने क्या कहा कि मैं पांडवों को 4 को नहीं मारूंगा, तो फिर ऐसे महारथियों को लेकर क्या फायदा है।
और भीम ने क्या कहा, मैं सारे 100 कौरवों को मार दूंगा। जब युद्ध चल रहा हो तो आप खुद के लिए नहीं लड़ना है, आप उस कम्युनिटी के लिए युद्ध करना है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, वैयक्तिक भावना, इसको दबा के रखना है। अर्जुन भीम को दो बार, एक बार नहीं दो बार कर्ण को मारने का अवसर मिल गया था। अब पढ़ सकते हो इसको, दो बार मारने का अवसर मिला। एक बार उसने सोचा नहीं नहीं, अरे अर्जुन ने व्रत लिया है, ये अर्जुन का ही बलि पशु है, उसको ही मार देना, मैं नहीं मारूंगा। और दूसरी बार जब शाल्य उनके सेना उनके रति बन गए कर्ण के उस समय, और उस समय भीम ने उनको परास्त कर दिया, बेहोश हो गए, और उनके जिवा से ऐसी बात निकल रही थी, वो जिवा निकलने वाले थे। शल्य ने बोला ऐसा मत कर, शल्य कर्ण का ही पक्ष का था, उन्होंने कहा ऐसा मत कर क्योंकि अर्जुन ने व्रत लिया है। हाँ भीम को याद है, हाँ बराबर है, अभी नहीं मारूंगा, दो बार हो गए। तो इस प्रकार से 10 दिन युद्ध नहीं करने वाले थे। फिर से कृष्ण आए। देखो यहां आप दो दृष्टिकोण से देख सकते हो। कृष्ण ने जाकर कर्ण से कहा, ठीक है ना 10 दिन युद्ध नहीं कर रहे हो ना, 10 दिन नहीं, जब तक भीष्म नहीं मरेंगे तब तक युद्ध नहीं कर रहे हो ना, हमारे पास आ जाओ। आप पांडवों के लिए 10 दिन तक युद्ध करो, उसके बाद यानी कि जब तक भीष्म नहीं मरेंगे तब तक युद्ध करो, उसके बाद फिर से वापस जाओ। लोग कहेंगे देखो कितना धूर्त राजकारणी है, अगर आजकल पक्ष में होते सब लोग उनको लेते, अरे हमारे पार्टी में आ जाओ, कैसे दूसरों को वापस इधर से उधर लेना। क्या कृष्ण ऐसा व्यक्ति है? इसलिए कृष्ण को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यानी कि जिन्होंने भगवान की इच्छा को ठुकरा दिया है, बोला नहीं करना है मुझे सेवा, धर्म स्थापन करने के लिए मदद नहीं करना है, मैं राज्य दुर्योधन को ही दूंगा, ऐसे व्यक्ति को भी सेवा में लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अरे कम से कम 10 दिन के लिए भक्ति करो, फिर से राक्षस बन जाओ, कोई समस्या नहीं। ये दृष्टिकोण से नहीं देख सकते क्या? ये ऐसा क्यों दृष्टिकोण होना चाहिए? देखो कृष्ण कितना धूर्त है, उसको आकर उसको फिर से कह रहा है। ये न तो कर्ण की बुद्धि थी समझने के लिए, न तो कर्ण भक्तों को ये बुद्धि आती है। बोले देखो कृष्ण कैसे धूर्त है। कर्ण ने कहा वसुदेव कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा लॉयल्टी दुर्योधन के लिए टिका रहेगा, वो टूटेगा नहीं, ऑलरेडी टूट गया 10 दिन के लिए, और प्रार्थना भी कर रहे हो कि उसकी मृत्यु होनी चाहिए। और स्वाभाविक 10 दिन के बाद भीष्मदेव गिर गए, उन्होंने खुद समझाया पांडवों को मेरी मृत्यु कैसी होगी, मुझे कैसे मार सकते हो। तो भीष्म ने समझाया, फिर पांडव अर्जुन उसको नीचे गिरा देते हैं और अपने कर्ण जाते उनको मिलने। जब कर्ण जाते हैं, कर्ण को भीष्मदेव गले लगाते, बोलते मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत आपको कड़ी शब्दों से बार बार आपकी निंदा की है, क्योंकि मैं आपको आपका जो पांडव के प्रति जो द्वेष है वो कम कराना चाहता था, इसलिए आपकी मैं निंदा करता था। और कौंत राधेय तुम एक्चुअली किसके पुत्र हो? कुंती के पुत्र हो, मैं पहले जानता हूं, उसको सब जानकारी थे पहले से, क्यों नहीं जानकारी होगी। तो उन्होंने कहा, भीष्मदेव ने कहा देखो जाओ पांडवों के पक्ष में चले जाओ, बोला नहीं। तो भीष्मदेव कहते हैं कि धर्म लोपे न कौन थे यार, कि तेरा जो जन्म हुआ है कैसे हुआ है, धर्म लोप के कारण हुआ है। कुंती आपको चाहती नहीं थी, कुंती गर्भ स्वीकार करने के लिए नहीं चाहती थी, सूर्यदेव जबरदस्ती कर रहे थे और जबरदस्ती के कारण धर्म लोप हो गया। उस धर्म लोप के कारण आपका जन्म हुआ है। और दूसरा, आपका संग किनके साथ है? बुरे लोगों के साथ में, इसलिए आपकी बुद्धि वहां जाती है, इसको छोड़ दो। ऐसे मरते समय भीष्म उनको कहते हैं, लेकिन सूर्य का पुत्र होने पर भी वो ग्रहण मरते तक ग्रहण वैसा ही रह गया। ग्रहण तो कभी एक घंटे के लिए लगता है, लेकिन ये ग्रहण कब तक लगा? जब तक मृत्यु नहीं हुई। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे सीधा जहां वो युद्ध करना चाहते हैं कृष्ण के पांडवों के साथ। द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई और कर्ण को सेनापति बनाया गया और इसके बीच में घटोत्कच की मृत्यु हो गई। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो भगवान प्रसन्न हो गए। हमने इसकी चर्चा की है सुबह। ये भगवान ने जो खेला धृतराष्ट्र को, संजय धृतराष्ट्र खुद संजय को कहते कि देखो ये कृष्ण की क्या चाल थी। उन्होंने वो जान गए कि कर्ण का जो शक्ति है उसका जो सामना करने वाले दो ही लोग हैं, एक अर्जुन और दूसरा घटोत्कच, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। उन्होंने घटोत्कच को भेजा, घटोत्कच जाओ उसके साथ युद्ध करो। एक ऐसा था कि जैसे चश्मे अगर आपने दाव लगाया, इसमें क्या होता है, घोड़ा भी जाएगा या हाथी जाएगा, एक ना एक जाएगा। तो घटोत्कच को भेजने से भगवान सोच रहे थे अगर घटोत्कच कर्ण को मारेंगे हमारी भलाई है, अगर कर्ण घटोत्कच को मारेंगे हमारी भलाई है। ये चाल कैसा है देखो, क्यों? क्योंकि अगर कर्ण घटोत्कच को मारेंगे तो कैसे मारना होगा, शक्ति अस्त्र से। जो शक्ति अस्त्र उनके पास थी उन्होंने खास उसको अर्जुन के पास उपयोग करने के लिए रखा था, लेकिन घटोत्कच को और किसी अस्त्र से मार नहीं सकते थे, केवल उसी अस्त्र से मार सकते थे, तो उनको उस अस्त्र का उपयोग करना ही पड़ा। उस अस्त्र का उपयोग यानी कि अर्जुन की, अर्जुन जीवित रहना और कर्ण की मृत्यु निश्चित। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, यहां भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, वो कहते कि अर्जुन देख आज मैं इतना प्रसन्न हूं क्योंकि मैं सुदर्शन चक्र लेकर और तू गांडीव लेकर कर्ण को सामना नहीं कर सकते थे। ये कृष्ण कहते हैं और व्यासदेव ने लिखा भी है इसको, कर्ण के प्रति पक्षपात नहीं किया है। कृष्ण कहते हैं मैं सुदर्शन लेकर और तू गांडीव लेकर, अगर कर्ण के पास कवच कुंडल था और ये शक्ति होता था कोई उसको परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दान भी दिया करता था, लेकिन आज उसके शक्ति का नाश होने के कारण मैं इतना प्रसन्न। और दूसरा है, घटोत्कच को अगर कर्ण नहीं मारता मैं खुद मारता था। और तब कृष्ण कहने लगते कि अर्जुन आप लोगों के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए मैंने क्या क्या चाल नहीं की। जरासंध को मैंने मारा, शिशुपाल को मारा आपके सामने ही, एकलव्य को मारा, अभी कर्ण की मृत्यु हो गई। अगर कर्ण मारा नहीं जाता था, अभी देखो भगवान अपने भगवत तत्व का प्रदर्शन करते, वो कहते कि सुदर्शन और गांडी से भी मारा नहीं जाता था, वो कहते अगर कर्ण मारा नहीं जाता था मैं खुद उसको मारता था। उधर ही कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करते हैं? एक अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण ऐसा कहते हैं कि हम उसको मार नहीं सकते थे, शक्ति के द्वारा उसको हम मार नहीं सकते थे, लेकिन यहां अपने जो महिमा को बता रहे हैं कि लेकिन मैं अगर कर्ण मारा नहीं जाता मैं स्वयं उसको मारता, इसलिए अब कर्ण मरा हुआ ही समझो, ऐसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं। और कर्ण एक बार दुर्योधन को कहते कि देखो दुर्योधन, मेरे में अर्जुन में कोई अंतर नहीं है, मैं उतना ही महान हूं, अर्जुन भी वैसा ही है, उसका रथ भी दिव्य है, मेरा भी रथ दिव्य है, मेरे भी घोड़े सफेद है, उसके भी घोड़े सफेद है, लेकिन एक ही समस्या है। समस्या क्या है? उसका जो सारथी है ना, वैसा सारथी मेरे पास नहीं है। अगर वैसा सारथी मिल जाए तो फिर मैं किसी को भी परास्त कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने पूछा ऐसा सारथी कौन है? शल्य है, शल्य उसको बुलाओ। अभी शल्य एक राजा थे और कर्ण को रबर स्टैम्प राजा बनाया गया था, कभी उधर गए ही नहीं है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे जिस देश का राजा बना है वहां कभी गए नहीं थे, तो ये संभव नहीं था कि शल्य इसको स्वीकार करेंगे। वो कहेंगे अर्जुन दुर्योधन तू क्या सोच रहा है, तो उन्होंने समझाया शल्य के बारे में, कर्ण ने समझा कि देखो ये महान रथी अगर ये मिल जाएगा ना तो निश्चित है। तो दुर्योधन जाकर इतिहास सुनाता है शल्य को। पहले तो शल्य बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोले तू क्या सोचता है मेरे बारे में, मैं उसका सारथी बनूं, वो सूत है मैं क्षत्रिय हूं, तू क्या समझ रहा है, ये नहीं समझ रहे कि वो भगवान है और अर्जुन दास है उनका, लेकिन फिर भी सारथी बने हुए। तो बहुत निंदा करता है दुर्योधन का, मैं जा रहा हूं अभी। तो दुर्योधन उसको पकड़ कर लाता है और कहां कहां का इतिहास सुनाता है। बोलता है मेरे घर पे एक बार मार्कंडेय ऋषि आए थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी मेरे पिताजी को, मैं भी सुनाता। देखो दुर्योधन भी कभी कभी कहानी सुनता था संतों के मुख से। और कैसी कहानी उसने याद रखी, जहां ब्रह्मा जी और शिव जी युद्ध कर रहे थे उसमें से ब्रह्मा जी सारथी बन गए शिव जी के। ये कहानी सुनाई और बोला कि शल्य देख तू ना कृष्ण के समान सारथी है। तो शल्य ने कहा क्योंकि तूने ये कहा इसलिए मैं सारथी बनूंगा, तूने मेरा जो तुलना कृष्ण के साथ में किया है इसलिए निश्चित से मैं सारथी बनूंगा, यानी कि सबको भगवान बनना है। शल्य भी चाहते थे कि अरे कृष्ण के समान हो, लेकिन शल्य ने कहा देखो एक शर्त है। शर्त क्या है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको सहन करना होगा। कर्ण को मैं कुछ भी बोलूंगा उसको सहन करना होगा। तो दुर्योधन नहीं जानते थे कि क्या बोलेगा, उसने ठीक है तू तैयार तो हो गया ना, तैयार हो जा चल बैठ जा। तो शल्य ने शल्य तैयार हो जाते हैं, कर्ण बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा उनके हाथ से गलती हो गई, क्योंकि केवल निष्णात सारथी होने से काम नहीं होता, उनमें क्या होनी चाहिए, उनमें कॉपरेशन होना चाहिए, उनमें संबंध होना चाहिए। तो जैसे वहां बैठ गए तो वहां कर्ण चालू करता है, वो कहता है कि आज देखो अगर यमराज स्वयं जो मृत्यु देने वाले भी अर्जुन को बचाना चाहेंगे उनके अर्जुन के साथ में यम को भी मार दूंगा, कुबेर वरुण इंद्र यम अगर ये साथ में आएंगे अर्जुन को बचा नहीं पाएंगे। तो शल्य क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कुछ भी बोलूंगा, तो शल्य ने कहा एह बंद कर बहुत हो गया तेरा बात। तो एक्चुअली इन दोनों की जो चर्चा है अगर आप पढ़ोगे एक गाली की स्पर्धा है। ऐसे एक हमारे भक्त कह रहे थे कभी एक कोल्हापुर में गाली की स्पर्धा हो गई, गाली सबसे गंदा कौन देगा, देखो उसकी स्पर्धा हो गई और इसमें कौन सज्जन लोग जाएंगे। तो एक ने ऐसी गाली दी कि दूसरा उसको सुन नहीं पाया, भाग गया वहां से, उसकी जीत हो गई, उसको ट्रॉफी भी मिल गया। तो इस प्रकार से दोनों की जो चर्चा है रथ पर बैठे हैं तो ऐसे गाली देते हैं, अगर आप पढ़ोगे अब पढ़ नहीं पाओगे, जो भागवत पढ़ता है इसको नहीं पढ़ पाएगा कि मुझे प्रेजेंट करना था इसलिए मैंने पढ़ लिया। तो ऐसी गाली देते दोनों। तो शल्य कहता है कि हे कर्ण देख अर्जुन सारे नरों में उत्तम है और तो नरों में अधम है। सरकास्टिक व्यंग बोलने में जितने भी व्यंग साहित्यकार है इसे पढ़ना चाहिए अगर उनको लिखना हो तो। फिर आगे वो कहते हैं कि तू अर्जुन के बारे में क्या जानता है। अर्जुन द्वारका में गए, द्वारका क्या है, किसका राज्य है द्वारका, कृष्ण का राज्य है। वहां से जब बलराम थे कृष्ण थे, थोड़ा मसाला डालकर भी बोल रहे इधर, कि उन्होंने क्या किया सुभद्रा को हरण कर लिया, देख क्या शक्ति है। और शिवजी महादेव स्वयं उनके साथ युद्ध करके उनको प्रसन्न किया और उसी प्रकार से उन्होंने अलग अलग जगह से जाकर इतने सारे अस्त्र लेकर आए। तब वो कहता है कर्ण कहता है बस कर मैं जानता हूं, देख मेरे सामने एक ही रथ पर बैठकर कृष्ण और अर्जुन आ रहे, देख मैं कितना महान हूं। कहने का उद्देश्य इतने महान लोग मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे कि मैं कितना महान हूं। यानी कि दोनों चर्चा चल रही है कि ऐसा मैं महान हूं तू महान नहीं है। तो शल्य कहता है, बोला देख तूने कभी सुना है गिदड़ सिंहों को मार सकता है? तू गिदड़ के समान है और तू सिंह को क्या मारेगा? और कहता है देख अगर कोई गले पे पत्थर लगाकर, बड़ा पत्थर लगाकर अगर समुद्र में कुदी मारेगा क्या वो तैर सकता है? वो डूब जाएगा। और गले में पत्थर लगाकर पर्वत से कुदी मारेगा वो थोड़ी हनुमान है, उसको मरना ही होगा। और तेरी बात ऐसी है, तू क्या कर रहा है? गिदड़ के समान बकवास कर रहा है। और कहता कि देखो कि तू गांव का कुत्ता है, तो गांव का कुत्ता होने के कारण तू भूख रहा है किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। तुझे गांव में जाकर भूखना चाहिए। देखो उसका सारथी है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन दोनों गाली दे रहे। तब कर्ण कहता है इट टेक्स वन टू नो वन, यानी कि वो क्या कह रहा है, तू तो गुणहीन है, तेरे पास कोई गुण नहीं है, अगर महान व्यक्ति को जानने के लिए महान बनना चाहिए, तू गुणहीन होने के कारण तू मुझे जान नहीं सकता। तो इस प्रकार से कर्ण और शाली की गाली चलती है। फिर अंत में बीच में ही कर्ण क्या करेगा, क्या करता है, जब आपका क्रोध बढ़ जाता है ना, फिर आप उसके गांव, उसके परिवार और उसके मां, उसके बाप, इनके बारे में गाली दो। यानी कि ये कितने अधम स्तर पर जाना। तो कर्ण मध्य देश के लोग, मध्य देश आजकल का जो इराक है वहां का देश है, वहां बहल्लिका और मध्य देश के लोग, उनके गांव के लोगों के बारे में चालू कर देता है। मैंने सुना है वहां के लोग नंगे घूमते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, गोमांस खाते हैं, किसी भी स्त्री किसी के पास भी चली जाती है। तू उसी देश का राजा है, तेरे पास कौन से संस्कार है, किस ब्राह्मण का सेवा किया तूने? इस प्रकार से उसको गांव के बारे में गाली देता है। और तब शल्य कहता है देख क्यों इतनी ढिंगी मार रहा है, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूं। और एक कहानी सुनाने लगता है कि एक गांव में एक हंस था और एक कौवा अपने मित्रों के साथ रहा करता था। एक कौवे ने क्या किया, झूठा खा खा कर दूसरों का बहुत दष्ट पुष्ट बन गया, शक्तिशाली बन गया। और एक बार उसने हंस को देखा और हंस को कहा चल हम अभी उड़ने का कंपटीशन लगाएंगे, देखते कौन उड़ता है। तो हंस ने कहा ठीक है। और सारे कौवे ने क्या किया, इस कौवे को स्फूर्ति देने लगे, हिप हिप हुर्रियो ऐसा कहने लगे। कौवा फिर भी प्रसन्न हो गया, बोला तू किस प्रकार के उड़ान को जानता है? तो हमसे बोला आप बोलो। तो कौवे ने कहा मैं 100 प्रकार के उड़ानों को जानता हूं और महाभारत में 25 उड़ानों का वर्णन भी है। वो कहता मैं उड्डीन जाता हूं, मतलब ऊंचा जा सकता हूं, अवडीन जा सकता हूं, नीचे आ सकता हूं, पड़ीन जा सकता हूं, चारों ओर से मैं उड़ सकता हूं, डिन मतलब डीन है कॉलेज का, डीन है लिखी, मैं सरल उड़ सकता हूं, और निडिन मैं धीरे धीरे उड़ सकता हूं, सडिन मैं सड़ता नहीं हूं लेकिन ललित गति से उड़ता हूं। ऐसे 25 उड़ानों के बारे में वो कौवा कहता है। तो उसके सारे कव्य मित्र बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वाह क्या निष्णात है। तो हम उसको पूछते आप कितने उड़ानों को जानते हैं, मतलब मैं एक ही उड़ान को जानता हूं, एक ही उड़ान को जानता है, चलो लगी। तो 1 2 3 चालू हो गया, उड़ने लगते हैं। तो कौवा अपना प्रदर्शन हर क्षण के लिए अलग अलग गति से उड़ने लगता है, समुद्र की ओर से उड़ रहे हैं, शल्य कहानी कर्ण को सुना रहे और कर्ण सुन भी रहे, क्योंकि जैसे नई कहानी आ जाती है सब लोग शांत हो जाते हैं। तो कर्ण भी शांत होकर सुन रहे, इतनी देर तक सुन रहे थे, देखो कितना सहन शक्ति था उनके पास और कहानी के महत्व भी है। तो ऐसे उड़ते उड़ते समुद्र के पास उड़ रहे थे और कौवा उड़ता गया ऊपर से नीचे, घूम के पीछे ऐसे तिरछा सब जगह से उड़ रहा है, और हंस एक ही प्रकार से उड़ रहा है और कौवे हंस रहे सब हंस के प्रति देखकर, तो कैसे उड़ता है। तब क्या हो गया, हंस आगे चला गया, कौवा थक गया, क्योंकि कौवा कितना उड़ सकता है। कौवा थका और देखा क्या है, समुद्र है, समुद्र है। तब हंस ने सोचा कहां चला गया, हंस पीछे आ गया और देखा कौवा उड़ रहा है। तब हंस ने पूछा, तूने सारे उड्डाणों के बारे में मुझे समझा, लेकिन ये क्यों गुप्त रख दिया? ये कौन सा उड्डाण है? आपने एक कौन सा उड्डाण बताया नहीं, अब क्या हो रहा है? पानी को स्पर्श कर रहा था, अभी डूबने वाला था, तो ये कौन सा उड्डाण है? तो कौवा ने कहा, ये कोई उड्डाण नहीं है, डूबना है, मैं भी डूब रहा हूं, मुझे मेरी रक्षा करो। तो हंस ने सोचा, चलो लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है। वो हंस था, वो कौवा नहीं था, इसलिए उसने उठाया और उसको बाजू में रख दिया। तो शर ने बोला, तू कौवे के समान है। तो फिर आगे जाते हैं, बोला बस कर, चलते रहते हैं, और उसके परिवार को गाली देता है कर्ण। यानी कि वहां देखो, ऐसे लोग इकट्ठा आ जाएंगे, जैसे अगर गौशाला में गायों को रखते हैं, वहां आवाज नहीं आता, रात के समय 100 गाय रखो, 200 रखो, झगड़ा करेंगे, वहां भी हायरार्की होती है, लेकिन भूखते नहीं है। लेकिन अगर कुत्तों को एक जगह में रखो, 100 कुत्तों को, और वहां प्राणायाम करने का प्रयास करो, ये संभव नहीं है, क्योंकि कुत्ते उनका स्वभाव क्या है, सब अपने आप को स्वामी समझते हैं, वो भूखने लगते हैं। तो ऐसे जा रहे थे, उन्होंने कहा, ये बताओ कर्ण, देखो कैसे अहंकार के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कर्ण कहने लगे, बताओ अर्जुन कृष्ण कहां है? जो भी अर्जुन कृष्ण कहां है वो बताएंगे, उनको मैं बहुत सारा भेंट दूंगा, 100 गाय दूंगा, 200 गाय दूंगा, 300 गाय दूंगा, अगर 300 गाय से संतुष्ट नहीं तो 500 गाय दूंगा। तो शल्य फिर से बोलते हैं कि तू क्यों ऐसा कर रहा है, कोई भेंट देने की आवश्यकता नहीं, खुद देख लेगा उनको, कृष्ण और अर्जुन स्वयं आ जाएंगे। और ऐसा दान देने से ये समझ में आता है कि तू अपात्र लोगों को दान दे रहा है, इधर उधर दान नहीं देना चाहिए, मंदिर बनाने के लिए दान देना चाहिए, तो दान ऐसे अपात्रों को नहीं देना चाहिए, कि क्यों ऐसा कर रहा है, वो आ जाएंगे स्वयं। तो कर्ण ये भी कहता है कि बताओ कृष्ण अर्जुन कहां है, अगर आप उनके बारे में मुझे बताओगे, मैं उनको मार दूंगा और उनके सारे संपत्ति मैं आपको दूंगा। ये कर्ण भक्त को जानना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा था, कृष्ण और अर्जुन को मार दूंगा। तो ऐसे काफी समय तक उनकी उनका युद्ध होने वाला था। फिर कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सामने लेकर आते हैं। हाँ, इसके बीच में क्या हुआ, तो जब घटोत्कच मर गया था, तब संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, अरे उसके पास शक्ति थी, कब से दी हुई थी इंद्र ने, तो उन्होंने अर्जुन के ऊपर छोड़ा क्यों नहीं? तो कई लोगों ने ऐसा भी लगा, क्योंकि बंधु प्रेम था इसीलिए नहीं छोड़ा। तो धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं, संजय कहते, अरे हम लोग हर रोज चर्चा करते थे, रात के समय कर्ण को कहते थे कल तुमको शक्ति छोड़ना है, कर्ण कहता था हां जरूर, मैं अर्जुन के ऊपर इसको चलाऊंगा, तो क्यों नहीं छोड़ा? सात्यकी ने प्रश्न कृष्ण से ही पूछा था, क्यों आप नहीं छोड़ोगे, क्यों नहीं छोड़ रहा था? तो कृष्ण ने क्या कहा कि हे सात्यकी, उसके हाथ में शक्ति थी, लेकिन उसकी बुद्धि मैंने हरण करके रखी थी। आपके पास पार्कर पेन होगा, सबसे अच्छा पेन होगा, सबसे अच्छा लैपटॉप होगा, सब इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसे चलाना चाहिए, उस बुद्धि को भगवान हरण कर लेते तो क्या लाभ है? इसलिए जब विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र जी को विद्या ग्रहण किया, उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा कि हे गुरु जी, हे विश्वामित्र मुनि जी, जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तब कृपा करके इसका चिंतन मुझे होना चाहिए, इसका उपयोग में आना चाहिए। अगर इसका उपयोग में नहीं आएगा तो क्या लाभ? तो कर्ण के पास पूरा इंफॉर्मेशन था, लेकिन जब चाहिए वो भूल जाते थे, और कौन भुला रहे थे? कृष्ण ही भुला रहे थे। इसलिए भौतिक समाज में, भौतिक जगत में रिसोर्सेस को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन अगर जब हमें सबसे महत्वपूर्ण समय, जब हम उसको चाहते हैं, अगर वो हमारे हाथ में नहीं आता तो क्या होगा, उसका क्या लाभ है? उसका कोई लाभ नहीं। तो यहां युद्ध फाइनल मैच चल रहा है, एक्चुअली फाइनल मैच था अर्जुन और कर्ण के बीच में, दोनों का रथ आ गया आमने सामने। और व्यासदेव जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि आमने सामने आ गए दोनों, कृष्ण ने शाल्य को देखा अपने दृष्टि से और दृष्टि के द्वारा शाल्य को परास्त कर दिया। अर्जुन ने कर्ण को देखा अपने दृष्टि से और अर्जुन ने अपने दृष्टि से कर्ण को परास्त कर दिया। और घोड़े देखने लगे, घोड़ों का भी देखो, वो घोड़े भी जानते हैं कि मैं अर्जुन का घोड़ा हूं, जैसे राणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, अगर 500 साल पहले अगर चेतक अपने स्वामी को बचा सकता है, ये तो घोड़े किनके थे, अर्जुन के घोड़े थे। जान सकते हो कि कितना उनका प्रेम था दोनों में। तो इस युद्ध देखने के लिए स्टेडियम भरा हुआ था, किनसे चर्चा चल रही थी, ब्रह्मा जी इंद्र सब लोग आ गए। और यहां आपको समझना चाहिए, ये स्वाभाविक है लोग पक्ष लेते हैं, चलो मैं भारत के लिए, भारत का मैं जय जयकार करूंगा, कोई कहेगा मैं पाकिस्तान का जय जयकार करूंगा, तो वैसे ही वहां दो भाग हो गए आकाश में, यहां एक और वहां एक, दोनों का भाग हो गया है। और कर्ण की ओर से कौन थे, सूर्य, क्योंकि उनके पिता थे, उनको पिता का भाव आ गया है इसलिए वहां आ गए। उनको तो धर्म के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन सूर्य होने पर भी क्या हो गया, अरे मेरा पुत्र है इसलिए वहां चले गए। आप देखोगे उनमें कौन कौन थे। और इंद्र अर्जुन की ओर आ गए, पुत्र का भाव था लेकिन सौभाग्यवश पुत्र धर्म की ओर से युद्ध कर रहा था। और भूदेवी अर्जुन की ओर से खड़ी हो गई उनको उत्साह देने के लिए। और जो दव नाम की जो देवता है, जो जो आकाश की देवता है, ये पूर्ण देवता नहीं है लेकिन वो वहां आ गई। और सारे पर्वत, सारे समुद्र, सारे नदियां, ये किसके पास आ गए, ये अर्जुन के पास। गरुड़ और बड़े बड़े जो महान सर्प, ये अर्जुन के पास आ गए। और छोटे छोटे सर्प जो पैर के पे बीच में घुसकर काटते हैं, ऐसे सर्प कर्ण की ओर आ गए। गंधर्व, ये अर्जुन के पास आ गए। यक्ष, भूत, पिशाची, बंगाली बाबा, ये सब लोग कर्ण के पास आ गए, जादू वाले, भूत पिशाची। और बाद में अर्जुन के यहां सारे जो महान जानवर, हाथी, शेर, सिंह, यानी कि जितने भी मंगल जीव जंतु है वो अर्जुन के पास में थे। जो भी अशुभ चीज है वो सब करने की सराहना कर रहे थे। तो ऐसे विभाग हो गया, चर्चा चल रही थी, ब्रह्मा जी ने कह दिया क्योंकि धर्म के साथ युद्ध हो रहा है, अर्जुन धर्म की पक्ष में भाग ले रहे हैं, और कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है और अर्जुन नर है, अर्जुन नर होने के साथ नारायण का संपर्क होने के साथ विजय किसका होगा, अर्जुन का निश्चित होगा। और अर्जुन के मुख से शब्द निकलता है, देखो अर्जुन के मुख से क्या निकलता है, अर्जुन कहता है कृष्ण मेरा विजय निश्चित है। क्यों निश्चित है, क्योंकि जो आप जगत गुरु हो, इस जगत के स्वामी हो, जब आप मेरे साथ में हो तो मेरा विजय क्यों नहीं होगा। यहां महानता का कोई सवाल नहीं है, महानता किसका है, महानता है निर्भर होने में, निर्भर होने में महानता है। कि अर्जुन स्वयं महान थे लेकिन महान होने पर भी वो कृष्ण के निर्भर में थे। जब द्वारका गए थे, दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए मांगने के लिए मदद, और अर्जुन जाकर कृष्ण के चरणों में खड़े हो गए और दुर्योधन जाकर सिर पे खड़ा हो गया। इधर ही समझ में आता है क्या खड़ा होना चाहिए, भगवान के चरणों में खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो जाकर बोला इसके चरणों में कौन खड़ा रहेगा, मेरे लिए अपमान है, मैं तो राजा हूं, उधर जाकर खड़े हो गए। और अर्जुन ने यही मांगा कि मुझे आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं तो चक्र नहीं उठाऊंगा, चले। तो दुर्योधन के कितना मूर्ख है, इससे क्या लेना देना है। इसलिए एक बार दक्षिण भारत के एक महान संत यमुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य के गुरु, वो रंगनाथ जी के दर्शन लेने के लिए आए थे और वे भगवान के चरणों के पास खड़े थे और एक उनका शिष्य ने पूछा आप वहां क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि रंगनाथ जी बहुत बड़े मूर्ति है। तो उन्होंने कहा वहां क्यों नहीं जाते है? तो यमुनाचार्य ने कहा वो दुर्योधन का स्थान है, ये अर्जुन का स्थान है, हम अर्जुन के अनुयायी है इसलिए हम यहां ही खड़े रहेंगे, भगवान के चरणों में रहेंगे। क्योंकि भगवान के चरण का आश्रय लिया हुआ था इसलिए अर्जुन को पूरा विश्वास था। और कर्ण किसका आश्रय लिया हुआ था, अपने खुद के अहंकार का। और युद्ध चलता गया, काफी देर तक युद्ध चला। एक समय कर्ण ने अर्जुन के प्रति बाण चलाया, सर्प अस्त्र, और शल्य ने कहा देखो तुम जहां निशाना लगाए हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अर्जुन की मुंडी नहीं उड़ेगी। आपने निशाना कहां लगाया, उसके गले पे लगाया, आप उसको छाती पे लगाओ। तो फिर बहुत गुस्सा आ गया कर्ण को, तू क्या मुझे समझाता है, एक बार मैंने निशाना लगाया, कर्ण दोबारा निशाना नहीं लगाता, उसको लगा कि वो खुद रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र दोबारा नहीं निशाना लगाते थे। निशाना छोड़ दो, पीछे से आकर अभिमन्यु को मारा था, वो कौन सा निशाना था, पीछे से मारा हुआ था। तो निशाना लगाया और उन्होंने कहा अर्जुन तुम मर जाओगे, उसमें एक सर्प घुसा हुआ था। जिस समय अर्जुन ने खांडव प्रस्थ को नाश कर दिया था, वो बदला लेने के लिए आया था, तो भगवान छोटा कृष्ण बड़े आसानी के साथ जैसे कि खेल खेल करते हुए उन्होंने क्या किया, रथ को दबाया। दबाते ही घोड़े तुरंत भगवान के साथ सहयोग कर रहे थे। जैसे ही दबाए घोड़े नीचे बैठ गए, थोड़ा सा पहिया मट्टी में चला गया और बाण आया और अर्जुन का जो किरीट था, जो इंद्र ने बनाया हुआ था, वो किरीट नीचे गिर गया और भस्म हो गया। यहां कर्ण के जो बाण छोड़ने में और उससे बढ़कर कृष्ण ने जो स्फूर्ति दिखाई और घोड़े ने जो सहयोग दिया वो इतना सुंदर था। देखो क्या मैच है, एक ही बार हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नीचे घोड़े उतरे और भगवान ने अर्जुन को बचाया, अर्जुन ने तुरंत पट्टी लगा लिया, अपने सुंदर केश को पीछे रखकर पट्टी लगाया और युद्ध चालू हो गया फिर से। और होते होते धीरे धीरे कर्ण ने काल पुरुष को देखा और उसका जो रथ है वो हिलने लगा, वो जान गए कि अभी मेरा रथ क्या होगा, फंस जाएगा। जब वो सोचे कि मेरा रथ फंस जाएगा, उनके मुख से ये श्लोक निकलता है जो हमने ये कहा श्लोक। ये श्लोक क्या है कि धर्म प्रदान किलपाति धर्म, कि हमने हमारे प्रयास से सुना था वरिष्ठों से कि धर्म का पालन करना चाहिए, मैंने धर्म पालन करने का प्रयास किया हमारे शक्ति के अनुसार, परंतु देखो इस धर्म ने क्या कर दिया, ये धर्म हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, धिक्कार है इस धर्म को। कृष्ण ने सुना, युद्ध चालू रहा और वो युद्ध कर रहे थे, बाण छोड़ रहे थे अर्जुन के ऊपर, अर्जुन उसको ले रहे थे। और एक बार कर्ण ने 12 बार अर्जुन के धनुष का डोरी 12 बार तोड़ दिया, और जैसे उसको तोड़ते अर्जुन उसको बांधते और कर्ण अचंभित रह गया, अरे बाप रे, इतना तेजी से इतने स्फूर्ति के साथ इसको बांध रहे, वो देखते रह गए। फिर युद्ध चल रहा था और जब कर्ण का रथ के जो पहिया है वो क्या हो गया, नीचे फंस गया, घुस गया। तो घुसने के कारण वो नीचे उतरे। अभी देखो किसको उतरना चाहिए, सारथी को उतरना चाहिए। अगर आपके यहां ड्राइवर है और आप हाईवे पर जा रहे हो, आपका पंचर हो जाता है, और आप सोच रहे कि ड्राइवर उतरेगा, वो बोलता है उतरो ठीक करो, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, मेरा काम है केवल चलाना। अगर ऐसा ड्राइवर हो तो फिर कैसी हालत होगी। तो यहां सारथी थे शल्य, उनको उतरना चाहिए था, वो बैठे रहे आराम से और कर्ण गए नीचे। देखो जहां संयोग नहीं है तो यहां निष्णात होने पर भी कुछ काम का नहीं है। जब अर्जुन के घोड़े तक गए थे, जब जयद्रथ के साथ युद्ध हो रहा था, जब कृष्ण ने क्या किया अर्जुन को, कहा अर्जुन घोड़े थके हुए हैं, उनको थोड़ा मसाज करना होगा, तो अर्जुन भी उतर गए, कृष्ण ने घोड़ों को मसाज किया। तो वहां युद्ध चल रहा था लेकिन लोग इतने मोहित हो गए भगवान को देखकर कि उनको वृंदावन की याद आ गई। देखो कृष्ण जितने भी वहां योद्धा थे उन सबको वृंदावन का याद दिलाए, है कि नहीं। देखो कृष्ण कैसे, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में वृंदावन को लाना केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, वो देखते रह गए। और अपने मोह के कारण अर्जुन कहते हैं भागवत में कि मैं नीचे उतरा था और मैं घेरा हुआ था कितने लोगों से, महारथियों से, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाया, क्यों, वो मोहित हो गए थे। तो उतरने पर भी बाण चलाना ये योद्धाओं का गलती नहीं है, तुम्हारा रथ ठीक होना चाहिए। उस नियम के अनुसार जब कर्ण का रथ फंस गया था, उनको मारने में कोई अधर्म नहीं है, इसको बड़ा अधर्म बना के रखा हुआ है। तब कर्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन रोको, कि आप धर्म के पालक हो, मेरे रथ मेरा पया फंसा हुआ है, उसको निकालने दो, उसके बाद मैं आपसे युद्ध करूंगा। वो क्या कर रहा था, निकालने के लिए प्रयास करता था, फिर से ऊपर जाता था, युद्ध करता था, ऐसे प्रयास कर रहा था, बैक एंड फोर्थ। तब कृष्ण कर्ण को संबोधित करके बोलते हैं, हाँ हाँ कर्ण, अब धर्म की याद आ रही है आपको। वो कहते हैं दुर्भाग्यवश साधारण लोग जब उनके जीवन में समस्याएं आती है वो क्या करते हैं, धर्म को कोसते हैं, अपने कुकर्म को नहीं। यही फिर से वही बात आ गई, जो कर्म सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक बन जाता है। धर्म को, धर्म का श्लाघन, धर्म की निंदा करना ये पाप है, और वो कर रहा था। और कृष्ण इसी कारण, ऐसे नहीं कि ये तंत्र था वो नीचे रहकर ही मारा जा सकता था, जब तुम धर्म को शाप दे रहे हो, एक कृष्ण इसको सहन नहीं कर पाए। और 12 श्लोक में कृष्ण कर्ण को याद दिलाते हैं, हे कर्ण, जिस समय पांडवों को विष खिलाया था उसमें आप भी थे, तब धर्म का आ गया था। जब द्रौपदी को वस्त्ररण हो रहा था आपने कहा तो वेश्या है, तब आपका धर्म क्या हुआ था। जब अभिमन्यु को पीछे जाकर आपने ही उसके कवच को मार दिया, तोड़ दिया, तब धर्म आपका कहा गया था। अब धर्म की बातें कर रहे हो, तब कर्ण क्या करते है, अपना जो मुंडी है वो नीचे डाल देते है। और कृष्ण अर्जुन को कहते मारो इसको, ये कोई अनुकंपा का लायक नहीं है, बहुत कठिन है ये समझना। लेकिन जहां धर्म की स्थापना हो रही है, लोगों ने सोचा मैच चल रहा है, ये मैच नहीं था। अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी माफिया को पकड़ रहे, बहुत बड़ा गुंडा है, वो भी बंदूक चला रहा है, तो स्वाभाविक है उसके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन ये स्पोर्ट्स नहीं है, इसमें वो जो गुंडा है वो ये नहीं कर सकता कि एक एक आ जाओ सामने, मेरे साथ अन्याय मत करो, सब लोग साथ में मत मारो, ऐसा वो क्या कह सकता है, उसको अधिकार नहीं है। अगर वो नीचे गिर गया, धोखा देकर भी मार सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से उसको मार सकते हैं, मारने से उस पुलिस अधिकारी को कोई पाप नहीं लगेगा, पाप लगना नहीं चाहिए, लगवाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मारने से समाज के कंटक को निकालने का श्रेय मिल जाएगा। तो कर्ण दुर्भाग्यवश जानते हुए भी समाज के लिए कंटक था। कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को कहा, अर्जुन नहीं मारना चाहते थे, जानते थे कि इतिहास के लिए हमेशा के लिए लोग मेरी निंदा करेंगे, लेकिन निंदा से नहीं डर रहे थे। किससे डरते थे? धर्म से। जहां कर्ण धर्म की निंदा कर रहे हैं, तो अर्जुन ने क्या किया, अंजुलिक नाम का अस्त्र निकाला और उसको मंत्र के द्वारा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रार्थना करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर मैंने गुरुजनों की सेवा की है, अगर मैंने शुद्ध जीवन जिया है, अगर मैंने तपस्या की है, अगर मैंने मित्रों की बात मानी है, उनकी उनका अपमान नहीं किया है, तो हे बाण, ये दिव्य बाण, कृपा करके आप इसके सिर को काट दो। इसका अर्थ क्या हो गया, अगर बाण नहीं लगता, अर्जुन अपने आप की परीक्षा कर रहे थे कि मैं अधर्मी हूं, मेरे में धर्म नहीं है, और अब परंपरा का पालन कर रहे थे। जिस समय लक्ष्मण जो इंद्रजीत को मार रहे थे, उन्होंने यही कहा था, अगर मेरे में राम में भक्ति है, अगर मैं धार्मिक हूं और इस व्यक्ति में अधर्म है, इस बाण में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जिस धर्म का मैंने आश्रय लिया है, जिस राम का मैंने आश्रय लिया है, वो शक्ति इस इंद्रजीत को मारने, और उस शक्ति ने क्या कर दिया, इंद्रजीत को मार दिया। वैसे ही अर्जुन अपने इंद्रिय नियंत्रण के कारण, अपने नम्रता के कारण, अपने पूरा भरोसा के कारण कृष्ण के प्रति उन्होंने जो बाण चलाया, उन्होंने कहा अगर धर्म की मैंने बात की है तो बाण लगना चाहिए, और बाण निश्चित रूप से लगा और कर्ण का जो सिर है वो निकल गया। और कर्ण का सिर निकलते ही जो सूर्य देव थे, मंद मंद गति से वो मंदिर में चले गए, अस्ताचल ने कि वो अस्त हो गए। उस प्रकार से कर्ण का जीवन अस्त हो गया। परंतु क्या बुरा हो गया उसके साथ, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के सामने मारे गए। हम कल सुबह बाकी जो बचा है उसकी चर्चा करेंगे कर्ण के बारे में, और बाकी जो जुआ खेलना, दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलना और एकलव्य के प्रति अन्याय, और कृष्ण, ये कल परसों दो दिन में हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो महाभारत में लिखा है कि अपने योद्धा होने के कारण उनको परम गति प्राप्त हो गई, और भागवत में लिखा है, उद्धव जी कहते जो इस युद्ध भूमि पर नहीं आए थे लेकिन उन्होंने सुना था कि कृष्ण के कारण, अर्जुन के कारण, वो कहते कि तथैव चान्यम नरलोक वीर ए आहवे कृष्ण मुकार विंदम नेत्र पिबंतो नयना विरामम पार्थस्त्रपूत पदमापुरस्य। कि हे विदुर, मैं उस कृष्ण का चिंतन करता हूं और मैं यही सोचता हूं कि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर इतने लोग मारे गए, लेकिन कैसे, उनकी हालत क्या हो गई। ये लोग जब कृष्ण को देखते हैं, ओ कृष्ण का चेहरा देखकर आकर्षित होकर अपने नेत्रों से उसका रसपान कर रहे थे। जिनको सकारात्मक दृष्टिकोण था, वो सकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण वो रसपान कर रहे थे। और ऐसे लोग जो भी उनके मन में कलमश था, उनके हृदय में गंदगी थी, वो अर्जुन के बाण के द्वारा शुद्ध हो गए और कृष्ण ने उनको परम धाम भेज दिया। मैं कितना दुर्भाग्य हूं, मैं यहां ही पड़ा हूं, ये उद्धव का दृष्टिकोण है। इसलिए हमारे आचार्य श्रीपद मध्वाचार्य लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण के सामने सूर्यपुत्र थे और उन्होंने कुछ सेवा की थी सुग्रीव के रूप में अपने पिछले जन्म में, तो भगवान ने क्या किया, उनके शरीर से जो पाप हुआ था उसको निकाल दिया। और कर्ण ऐसा क्यों कर रहे थे, बोलने पर भी क्यों नहीं सुधर रहे थे। उनका जो पूर्व जन्म की जो कहानी है ये पद्म पुराण में, महाभारत में और अन्य शास्त्र में उसका उल्लेख है, इसको भी हम कल चर्चा करेंगे सुबह 8 बजे। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की।
ये सारे पढ़ा।